दृशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवरा भीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनम् समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृतिम् वसानम् विश्वाद्यम् विश्ववन्द्यम् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् नारायणम् पद्मभवम् वसिष्ठम् शक्तिम् च तत्पुत्रपराशरम् च व्यासम् सुकम् गौडपदम् महन्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादम् च हस्तामलकम् च शिष्यम् तन्त्रोटकम् वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुम् सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ मतुश्री बेलाबेन तथा मुलजीभाई दैया विश्राम दैया परिवार द्वारा तथा प्रेमपुरी आश्रम संयुक्त आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायंकालिक एकादशी दिवसीय ये विशेष प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आज कितना आठवां दिन आज आठवां दिन है उसका। इस गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की कृति वाक्यवृत्ति नामक इस प्रकरण के आधार पर वेदांत वाक्यों का विचार चल रहा है। विचार के लिए 26वां श्लोक होगा नहीं? यह साक्षी लक्षणो बोधस् तं पदार्थ सौच्यते साक्षित्वम् अपि बोधृत्वम् अविकारितयात्मनः देहेन्द्रिय मनः प्राण अहंकृतिभ्यो विलक्षणः प्रोज्जिता शेष षड्भाव विकारस्तुं पदाविदः तमर्थम एवं निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत् पुनः अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षात् विधिमुखेन च निरस्ता शेष संसार दोषस्थूलादिलक्षण अदृश्यत्वादिगुणक पराकृततमो मलः निरस्तातिशयानन्दः सत्यप्रज्ञानविग्रह सत्तास्वलक्षणः पूर्ण परमात्मेति गीयते सर्वज्ञत्वं परेशत्वं तथा संपूर्णशक्तिता वेद हि समर्थ्यते यस्य तद्ब्रह्मेत्यवधारय यज्ज्ञानात् सर्वविज्ञानम् श्रुतिषु प्रतिपादितम् मृदात्तनेकदृष्टान्ते तद्ब्रह्मेत्यवधारय। हाँ, तो विचार चल रहा है शिष्य गुरु से ये कहता था कि महाराज अनायास से भवबंधन से मुक्त हो सकूं, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। आयास भी करना न पड़े, बंधन की निवृत्ति भी हो जावे। गुरु ने सूत्र के रूप में बता दिया, संक्षिप्त रूप में बता दिया। कि वाक्यार्थ जन्य जो अखंडाकार ज्ञान है, वो ज्ञान से अनादिकालीन भवबंधन से तुम मुक्त हो सकते हो। शिष्य कहता है, महाराज वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पहले पदार्थ ज्ञान होना चाहिए। मुझे अभी तक पद का अर्थ ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वाक्य का अर्थ ज्ञान कैसे होगा? पहले मुझे पदार्थ का ज्ञान कराइए। तो पदार्थ ज्ञान कराने के लिए तुम पद का शोधन आरंभ किया। तुम पद के शोधन के क्रम में ही अनेक दृष्टांत आदि देकर तुम पद के अर्थ को बता रहे हैं कि तुम पद का अर्थ क्या है। जो स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्था है, ये तीनों अवस्था में क्रमशः दो अवस्था में भाव पदार्थ को जानने वाला और तीसरी जो अवस्था सुषुप्ति है उसमें पदार्थों के अभाव को जानने वाला। स्वप्न जागृते सुप्तिम भावाभावो धियाम तथा यो व्यक्ति अभिक्रिया सन। विकार रहित होकर स्वयं साक्षात जान लेता है, उसका नाम साक्षी है। वो साक्षी तुम पद का अर्थ है। तुम पद से उसी साक्षी को बताया गया है। इस पर कल भी चर्चा हुई थी संकेत रूप में, साक्षी का अर्थ बताया। इंद्रियाणाम जड़त्वेन स्वतः प्रकाशकत्व असंभवात्। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से जड़ होने के कारण अपने आप पदार्थों को प्रकाशित करने में असमर्थ है। प्रकाश का संयोग संसर्ग प्राप्त किए बिना इंद्रियां पदार्थ को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं। वो प्रकाश है अंदर से आने वाला चैतन्य का। चैतन्य का संसर्ग हुए बिना इंद्रियां पदार्थ को जान नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि इंद्रियों से जो पदार्थ ज्ञान हो रहा है वह भी चैतन्य को ही हो रहा है। हमें भ्रांति से ये होता है कि इंद्रियों को हो रहा है, लेकिन इंद्रिय में चैतन्य का संसर्ग न हो तो इंद्रिय पदार्थ को ग्रहण कर नहीं सकती है, इसलिए चैतन्य ही पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है। ये पदार्थ भाव पदार्थों को जानने के लिए चैतन्य इंद्रियों के माध्यम से जान लेता है। भ्रांति से हमें यह लगता है कि इंद्रियां जान रही है, इसी का नाम भ्रांति है, भ्रम है। जैसे हमने एक दिन पहले भी कहा था ये बात इसी प्रसंग में, अजड़ात्मत्वद आभान्ति यत् सान्निध्या जड़ा अपि। 20वें श्लोक की व्याख्या में हमने ये बात कहा था, जड़ पदार्थ शरीर प्राण इंद्रियां अंतकरण ये स्वरूपतः जड़ है, जड़ होने पर भी जिसके सान्निध्य से ये चैतन्यवत भ्रांति से आवासित हो रहा है, जड़ के सान्निध्य से अजड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। बताया अयस्कांत मणि के वत चुंबक के दृष्टांत दिया, क्रिया रहित लोहे में चुंबक के सान्निध्य से क्रिया दिखती है, निष्क्रिय लोहे में चुंबक के सान्निध्य से क्रिया दिखती है। इसी तरह चैतन्य के सान्निध्य से इस जड़ पदार्थ में चेतना जैसा भान होता है। सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा की अवस्था में बाह्यकरण काम नहीं करते, अंतकरण काम नहीं करता, तो साधन तो है ही नहीं। तो भी जागृत स्वप्न के तमाम भाव पदार्थ का अभाव को बिना साधन के जान लेता है। जो साक्षात जानाति इति साक्षी, स्वयमेव जानाति इति साक्षी, किसी करण का किसी साधन का प्रयोग किए बिना स्वयं जान लेता है। सुसुप्तिम अन्य निरपेक्षतया साक्षात व्यक्ति तस्मात आत्मैव अवस्थात्रय अपि साक्षी। ये सिद्ध हो गया कि तीनों अवस्था में आत्मा ही साक्षी है, वो साक्षी तुम पद का अर्थ है। दृष्टांत दिया जैसे दीपक, उसके बाद बताया तुम पद का दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि वह एक तो चैतन्य रूप है, दूसरा वो सत रूप है, और तीसरा वह आनंद रूप है। सिर्फ आनंद नहीं, वो परम आनंद है। कल के अंतिम में ये श्लोक की व्याख्या हुई है, पर प्रेमास्पदतया मान भूवम अहम सदा भूयासम इति यो दृष्टा सोहम इत्यवधारया। व्यक्ति ये चाहता है मैं रहूं, मैं न रहूं ये कोई नहीं चाहता, मैं रहूं यही चाहता है। कोई प्रश्न ये कह सकता है कि भाई मैं रहूं ये जो चाहता है तो फिर व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है, आत्महत्या क्यों करता है? आत्महत्या करने वाला ये सोचकर आत्महत्या करता है कि मैं रहूं, तो वो ये सोचता है कि मैं न रहूं, इसके लिए वो आत्महत्या करता है। जबकि वो मैं रहने के कारण मैं दुखी हूं, मैं नहीं रहूंगा तो दुखी ही नहीं रहेगा, उसके दिमाग में यही बात आ रही है ना। और आप कहते हो कि मैं न रहूं कोई नहीं चाहता है, मैं रहूं ये सभी की कामना है, इच्छा है। तो वास्तव में उसके रहने से वो दुखी नहीं हुआ है, दुख का कारण है वो समझ नहीं रहा है, इसीलिए शरीर के रहने को वह मैं रह रहा हूं ऐसा वो परिभाषा कर रहा है। इसीलिए कहता है कि मैं हूं इसलिए दुखी हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मैं दुखी नहीं रहेगा। अब उससे यदि पूछो तुम आत्महत्या करोगे उससे क्या होगा, बोलो, बोले दुख नहीं रहेगा, वो यही नहीं जवाब देगा, मैं आत्महत्या करूंगा मर जाऊंगा तो दुख नहीं रहेगा, यही नहीं जवाब देगा वो। दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बोलो, उसे पूछना पड़ेगा आखिर तुम मरने के बाद दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? भाई दुख नहीं रहेगा तो आनंद रहेगा। अरे मूर्ख, किसको रहेगा आनंद? आनंद रहेगा किसको, उससे पूछो। तू मर गया, अभी तू रह रहा है इसलिए दुख हो रहा है, तू मर जाएगा तो दुख नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बोले दुख नहीं रहेगा तो आनंद रहेगा। आनंद किसको रहेगा? बोले तब तो हम आनंद में रहेंगे। अले वो कौन, कहां रहेगा तू? इसका मतलब है अपनी सत्ता को तो वो फिर भी स्वीकार कर रहा है, मरने के बाद भी अपनी सत्ता को तो वह स्वीकार कर ही रहा है। मैं आनंद में रहूंगा, यही ना उसको भ्रांति है। जबकि हमारा वैदिक सनातन धर्म का शास्त्र ये कहता है दुख से घबराने वाला व्यक्ति इस तरह से आत्महत्या करके वह सुखी कभी नहीं होगा। आत्महत्या दुख का समाधान नहीं है। और यहां तक हमारा शास्त्र तो ये कहता है, हमारे गुरु तो ये कहते हैं कि दुख और बढ़ जाएंगे उसको। क्योंकि जो प्रारब्ध इस जन्म में भोगना था वो तो पूरा भोगा नहीं, प्रारब्ध भोगने से घबराकर वह धैर्य छोड़कर उसने आत्महत्या कर ली, तो भोगने यज्ञ प्रारब्ध तो अभी स्टॉप हुए हैं, नष्ट हुए नहीं है, स्टॉप हो गए। वो योगियों की तरह योगी निर्विकल्प समाधि में जाएगा तो जब तक समाधि में रहेगा दुख नहीं होगा। दुख न होने पर उसका प्रारब्ध समाप्त तो होंगे नहीं, माइनस तो होंगे नहीं, प्रारब्ध तो भोगकर ही समाप्त होंगे। अब वो योगी देह और प्राण इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं है तो बुद्धि के साथ तादात्म्य न होने के कारण भोक्ता नहीं बन पा रहा है। तादात्म्य होकर जो भोगना था वो अभी भोग नहीं पा रहा है, इसका मतलब प्रारब्ध नष्ट नहीं हुआ, स्टॉप हुए, पॉज हो गए, इतना ही तो है और क्या। और जब वह समाधि से जगता है तो प्रारब्ध उसको भोगना ही पड़ता है, छोड़ता नहीं। हम तो यही कहते हैं कि और मुसीबत होगा, समाधि में जाने पर प्रारब्ध नष्ट हो गए नहीं, आयु नष्ट होता है। आज सुबह स्वाध्याय में आ गई ना बात, गहरी निद्रा में सो जाने पर पाप पुण्य कुछ होगा नहीं, उल्टा क्या होगा, वृथायु क्षेपणम भवेत, आयु क्षय हो जाएंगे। अब जवानी के जो आयु है वो तो तुम समाधि में बैठ गए, बुढ़ौती में समाधि खुली तो बुढ़ौती में और दुख आके घेरने लग गए, और ज्यादा कठिन हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि जवानी में ही सब दुख भोग के खत्म कर दो ना भाई है। अब ये प्रारब्ध भी बड़े बदमाश हैं, आते तो हैं, जवानी में भी प्रारब्ध आते हैं, लेकिन जवानी में पता नहीं चलता है। बुढ़ौती में जो प्रारब्ध आए हैं जवानी में भी वही प्रारब्ध आएंगे, जवानी में पता नहीं चलता है। शरीर की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाते हैं तो प्रारब्ध तो पता ही नहीं चलता है। अब बुढ़ौती में जरा जीर्ण होते हैं शरीर, और छोटा सा भी प्रतिकूल जो है वह भयंकर लगने लगता है। प्रारब्ध कोई भयंकर नहीं है, लेकिन हमारी उसको सहन करने की क्षमता की कम के कारण वही भयंकर लग रहा है। आप लोग तो बंबई रहते हो, ठंडी का कष्ट क्या होता है हम लोगों को क्या पता है, वो तो हम नेपाल में रहते हैं इसलिए हमको पता है ना कि ठंडी क्या होती है। हर साल बूढ़े लोग, जवान लोग नहीं बोलते हैं ये बात, वृद्ध लोग क्या कहते हैं, हर साल जब ठंडी पड़ती है पिछले साल से इस साल ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ गई, ये कहते हैं वो लोग, बूढ़े लोगों के मुख से यही सुनने में आता है, पिछले साल इतनी ठंडी नहीं थी, पिछले साल से कुछ इस साल ज्यादा ही ठंडी पड़ गई। हम कहते हैं ठंडी ज्यादा नहीं पड़ी है, तुम कमजोर हो गए हो, तुम कमजोर होने के कारण तुम्हें ठंडी ज्यादा महसूस हो रहा है। ठंडी तो उतना ही है, टेम्परेचर देख लो, पिछले साल भी माइनस में था, इस साल भी माइनस में है, कोई ज्यादा नहीं है। बोले हां स्वामी जी ऐसा है, माइनस ही है, पिछले साल भी माइनस, अब भी माइनस, बराबर है। बोले नहीं, हमको कुछ ठंडी ज्यादा ही लग रही है, ज्यादा लगने का कारण यह है कि तुम कमजोर हो गए हो और कुछ नहीं है। और वही तुमको जो ठंडी ज्यादा लग रही है उसी में बच्चे नंगे खेल रहे हैं मैदान में, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो प्रारब्ध तो शक्ति पूर्वक धैर्यता पूर्वक भोगने की चीज है। जब तुम समाधि से जागते हो तो फिर भोगना पड़ता है, तो उस समय और मुश्किल पड़ जाता है भाई। उसी बात को यहां वर्णन करते हैं, तुम पद के ये चार लक्षण अभी तक के प्रसंग से निश्चय हो गया है। एक तो तुम पद का अर्थ हो गया साक्षी, दूसरा तुम पद का अर्थ हो गया चैतन्य विग्रह यानी चैतन्य स्वरूप। अभी तक के प्रसंग से तीसरा तुम पद का लक्षण हो गया आनंद, और चौथा तुम पद का लक्षण हो गया सत्य। सतचित आनंद ये तीनों मिलकर साक्षी हो गया। सत भी साक्षी होगा, चित भी साक्षी होगा, और आनंद भी साक्षी होगा। अब ये अलग अलग साक्षी नहीं होंगे, एक ही साथ मिलकर साक्षी होगा, ये तीनों मिलकर एक है, इसलिए साक्षी एक है। ये विश्लेषण से ये शिष्य तुमने जो कहा था करामलकवद बोध आत्मे रखे हुए अमले की तरह संशय विपर्यय रहित स्पष्ट मुझे बोध होवे ऐसा कुछ बताइए। तो त्वम पद का अर्थ करामलक बोध यही है कि साक्षी चैतन्य आनंद रूप सत्य स्वरूप है, ये करामलकवद ही बोध होना है, स्पष्ट है। अब इसमें संशय विपर्यय रहना नहीं चाहिए। उसी बात को यहां फलितार्थ कह रहे हैं। यह साक्षी लक्षणो बोध तम पदार्थ समुच्यते साक्षित्वमपि बुद्धित्वम् अविकारितयात्मनः। ये तुम अपने आप को आत्मनः अपने आप को इस रूप में पक्का निश्चय करो। जो बोध स्वरूप साक्षी का लक्षण बताया गया है, यानी ज्ञान स्वरूप साक्षी का लक्षण जो बताया गया है, वह उसको तुम आत्मतया बोधा अपने ही स्वरूप के रूप में तुम अवधारया निश्चय करो। बुद्धितया साक्षीतया आत्मानः अवधारया। तो साक्षी को यहां फिर व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार। सो अध्यस्तम सर्वम, देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। सो अध्यस्तम सर्वम साक्षात अन्य अनपेक्षेत प्रकाशयति इति साक्षी। कल साक्षी का दूसरा व्युत्पत्ति बताया था, आज साक्षी का दूसरे व्युत्पत्ति बता रहे, लेकिन दोनों अर्थ में एक ही है। दृष्टांत यहां बड़ा सुंदर दिया, मैं तुम्हें एक दृष्टांत दूं। किसी ने कांच के ऊपर लैंप होता है ना बल्ब, उसके ऊपर बढ़िया किसी बढ़िया चित्र का पेंटिंग किया, चित्र बनाया किसी ने। अब उस चित्र में हाथ बनाया, पांव बनाया, सिर बनाया, धड़ बनाया, सब कुछ बनाया। शायद वो बूढ़ा व्यक्ति होगा तो उसके लकुटी भी बनाया होगा, लकड़ी भी बनाई होगी। लेकिन वो बल्ब बत्ती का पावर का ऑफ किया हुआ था तो रात्रि में वो चित्र दिखेगा नहीं, है ना? अब उसको बिजली के साथ जोड़कर ऑन कर दो तो प्रकाश तो अंदर से, रोशनी तो अंदर से आएगी। अब बताइए कि ऑन करते ही, रोशनी होते ही उस बल्ब के ऊपर किया गया सारा पेंटिंग स्पष्ट दिखेगा कि नहीं? इसी तरह ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अब वेदांत की दृष्टि से ये बात आपको समझ में आएगा। सो अध्यस्तम सर्वम। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज्ञानी सर्वज्ञ होता है, ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। कैसे सर्वज्ञ होगा? बोले सो अध्यस्तम सर्वम, साधन निरपेक्षतया व्यक्ति इति साक्षी, साक्षात व्यक्ति इति साक्षी। अब सारा जगत का पदार्थ अधिष्ठान में अध्यस्त है वेदांत के हिसाब से। हा? जगत को हम क्या कहेंगे? अधिष्ठान में अध्यस्त है जगत, तो अध्यास है, अध्यस्त है। और निराधिष्ठान कोई कल्पना नहीं होती है, निराधिष्ठान कोई अध्यस्त नहीं होता है। जो आरोपित होता है, जो काल्पनिक होता है, जो कल्पना की जाती है जिसकी, वह निराधिष्ठान तो कल्पना नहीं होती है, अधिष्ठान चाहिए। ब्रह्मा से लेकर एक पिपीलिका पर्यंत, ब्रह्मांड से लेकर पिंडांड पर्यंत सब कुछ अध्यस्त है, माया कल्पित है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया है, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। ये देख लो, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, माया बीव विजृंभयत्यपि महायोगी वय विजृंभयति। देख लो, मायावीव विजृंभयति अथवा योगीव यो विजृंभयति। हाँ, मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगीव यस स्वच्छया, स्वच्छया विजृंभयति। महायोगी जिस तरह उपादान और सहकारी कारण के बिना ही योग शक्ति से हर वस्तु की वह कल्पना करता है, उत्पन्न करता है, करता है कि नहीं? महायोगी को कोई उपादान कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह केवल संकल्प मात्र से सभी पदार्थों का निर्माण कर लेता है। तो उससे पहले शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया, मायावीव, कोई मायावी यानी जादूगर, जादू के प्रभाव से उपादान कारण आदि, सहयोगी कारण आदि के बिना भी कार्य प्रतीत उत्पन्न करके दिखा देता है, जादूगर दिखा देता है। उसके लिए वो सब चीज चाहिए नहीं जो तुम्हें हमारे लिए कोई कार्य उत्पन्न करने के लिए सब साधन की आवश्यकता पड़ती है, उस जादूगर को उन साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल जादू का प्रभाव है उसके पास, उसी से सब काम कर लेगा। हमको ये करेंसी नोट बनानी हो तो बढ़िया क्वालिटी के कागज चाहिए, गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए, उसमें सब प्रेस भी उसी प्रकार का हो, एक निश्चित स्थान में हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, है ना, तभी जाकर वो एक नोट हम उत्पन्न निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जादूगर सड़क के किनारे खड़ा रहता है, ना वहां गवर्नर की सिग्नेचर है, ना कोई गवर्नर है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, ना कुछ कागज है, ना कुछ है, और सबके देखते देखते ही नीचे से मिट्टी उठाता है और मुट्ठी बांधता है, खोल के दिखाता है तो हजार हजार के करेंसी नोट दिखा देता है। ये हजार के नोट कैसे बनाया उसने? माया का प्रभाव है, जादू का प्रभाव है, माया का प्रभाव है। अब तुम उससे जाकर पूछो उपादान कारण क्या प्रयोग किया है, सहकारी कारण क्या प्रयोग किया है, जादू का प्रभाव। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है, सड़क के किनारे में जादू के प्रभाव से हजार हजार के नोट बनाने वाला जादूगर खेल खत्म होने के बाद दस रुपया के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है। फैलाता कि नहीं बोलो? है? हजार हजार का नोट बनाने वाला क्षमता वाला जादूगर खेल खत्म होने के बाद तुरंत तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है, दस रुपया दे दो, दस रुपया दे दो, दस रुपया दे दो। उससे कहो अभी तुमने हजार हजार का नोट दिखाया था, तो बोले वो तो सब जादू से खाली देखने के लिए है, ये व्यवहार के लिए नहीं है। अब ये सारा जगत तो व्यवहारिक हो रहा है महाराज, कल्पना होती तो जैसे जादूगर की कल्पना से बना हुआ वस्तु केवल काल्पनिक होती है, व्यवहारिक नहीं। उससे एक कप चाय भी वो खरीद के नहीं पी सकता है, उन नोटों से पी सकता है? तो आप कहते हैं कि ये विश्व कल्पना है, जादू की तरह बोलते हो, यहां तो सब कुछ चल रहा है, हैं? हजार के नोट दे तो भरपेट दो टाइम बढ़िया बढ़िया फाइव स्टार होटल में भोजन खर्च सकते हैं। ये कैसे हम माने कि माया जादूगर की तरह है? बोले ठीक है, जादूगर की तरह मत मानो, महायोगी वयसक्षया। कोई समर्थ योगी यदि कल्पना करे तो वो उसके योगी के द्वारा किए गए कल्पित पदार्थ पूरी तरह व्यावहारिक होते हैं, वो जादूगर की तरह प्रतीति का विषय मात्र न होकर व्यवहार का विषय भी हो जाएगा। तो आप लोगों ने सुना है पुराणों में बहुत सी कथाएं, कई योगियों की कथा आप लोगों ने सुनी है, योग शक्ति से कल्पना करके बहुत कुछ वस्तु को प्राप्त किया, आप लोगों ने कई बार सुनी है। सौवरे ऋषि की बात तुम लोगों ने सुनी है, हैं? समर्थ थे, पानी में हजार दस हजार वर्ष समाधि लिया गया, योग साधना करके योग सिद्धि प्राप्त किया। जब योग से जगे तो उनको इच्छा हुई कि हम भी गृहस्थ बन जाएं, कोई एक कन्या मिल जाए तो फिर हम भी गृहस्थी बन जाएं। तो मानदाता राजा के यहां पहुंच गए तो उनसे एक कन्या की याचना की, राजन तुम्हारे पचास पचास कन्याएं हैं सुना है, तो ये कन्या हमको दे दो, हम भी अपना गृहस्थ बसाएं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करें, विषय सुख को भोगें। राजा विचार करने लगा, अब ये हजार दस हजार वर्ष तपस्या करके सुखा हुआ बुड्ढे को अपनी क्या सुंदर पुष्प जैसे गुलाब के फूल जैसे कन्या कैसे दे भाई? अब मैं राजी खुशी से दे देता हूं तो कन्याएं मुझे श्राप करेंगे कि ये मेरा बाप कैसा है, ऐसे बुड्ढे के साथ है हमारी शादी करा दी, इससे अच्छा तो पहले ही मार दिया होता, जरूर कोसेंगी वो। और नहीं करता हूं तो ये योगी है मुझे श्राप दे सकता है, तो कन्याएं भी मुझे न कोसें, योगी श्राप भी मुझे न दे। विचार करके कहा सौवरी ऋषि को, तुम जाओ, कन्याएं जहां हैं उनमें से जो तुम्हें पसंद कर ले उसके साथ शादी करो, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। राजा ये समझ रहा था कि मेरी कन्याओं में से कोई भी इसको पसंद नहीं करेंगे, है सर्प भी मर जाए लाठी भी बची रहे न टूटे, राजा ये समझ रहा था। राजा के मन के भाव सौवर्य ऋषि योगी थे, वो समझ गए इस बदमाशी से इसने ये बात कही है। योग सिद्धि से उन्होंने काया विवाह कर ली, जरा जीर्ण हुआ हुआ शरीर को तो वह साक्षात एकदम युवा, साक्षात मन्मथ जैसे, कामदेव का अवतार जैसा बन गए वो तो। और ऐसा स्वरूप लेकर वो 50 कन्याएं जहां थी वहां पहुंच गए सौवर्य ऋषि, क्यों राजा की आज्ञा थी। उसको देखते ही एक ने नहीं 50 के 50 ने प्रस्ताव राख दिया, लिप जा हमसे शादी करो, हमारा हाथ पकड़ो, हमसे शादी करो, हमारा हाथ पकड़ो, एक नहीं 50 ने। वाह, सौवर्य ऋषि को तो क्या क्या कहना था, आपके भाषा में लॉटरी खुल गया कि नहीं बोलो, लेकिन आज की भाषा में नहीं है, है? उस समय सौवर्य ऋषि के लिए कोई मुसीबत नहीं, आपके लिए मुसीबत है। उन्होंने ये मुसीबत आ गई, ये झंझट नहीं मानो, उनका वाह बढ़िया हो गया, एक मांगा था 50 मिल गई। तुरंत उन्होंने सबको स्वीकार किया और सबके लिए योग शक्ति से संकल्प करके एक एक घर का निर्माण करके रख दिया। और उस घर में ऐसा नहीं है कि कोई चीज की कमी हो, उनको तो कोई वस्तु कहीं से मेहनत करके लाना तो था ही नहीं, आसन लगा संकल्प किया ये वस्तु चाहिए, तुरंत तैयार। हर घर में हर वस्तु की उपलब्धि है, 50 के 50 कन्याओं को कभी भी ये अनुभव होने नहीं दिया कि ये चीज मेरे पास नहीं है, मांग करते ही उपस्थित है वस्तु, योग सिद्धि है। तो भागवत में लिखा है भैया, आप लोगों ने सुना ही है भागवत। इस तरह सौवर्य ऋषि की गृहस्थ जीवन चलने लगा, चलते चलते एक एक से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, कितना बड़ा परिवार हो गया बोलो, है 500 ये बच्चे, 50 वो औरतें, वो अपना फिर स्वयं 551 हो गया बोलो, है कितना बड़ा कुटुंब हो गया। अब सबके लिए वो जो वस्तु जिसने जो मांगी, संकल्प करते हैं योग सिद्धि है, वस्तु उत्पन्न। अब धीरे धीरे यही तो वेदांतियों की दृष्टि है, यद्यते कर्मचीत लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचीत लोकक्षीयते, तपस्या करके प्राप्त संचित किया हुआ शक्ति का प्रयोग भोग में प्रयोग करोगे तो वह शक्ति क्षय हो जाएगा। सौवर्य ऋषि की यही हुई, शक्ति क्षय हो गया, क्योंकि अब तपस्या में तो कर तो सके नहीं, भोग में आसक्त हो गए, पहले किए संचित किया हुआ शक्ति क्षय हो गया। अब संकल्प करते हैं, पत्नी कहती है कि मुझे एक साड़ी ला के दो, संकल्प करते हैं साड़ी, तो साड़ी आती ही नहीं है, अब क्या करें भाई। बच्चा कहता है मुझे फलाना चीज चाहिए, तो वो संकल्प करते हैं आता ही नहीं है, हैरान हो गए, अब झंझट में फंसे। जब तक शक्ति थी तो झंझट नहीं लगा, अब शक्ति शिथिल हो गई तो अब मुसीबत आ गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो छटपट आने लगे। तब वो गृहस्थी उनको झंझट होने लगा, तब सब छोड़ छाड़ कर वो भागे सौवर्य ऋषि। तुम कहोगे कि देखो कर्तव्य पूरा न किए बिना भाग गया, अब कर्तव्य करे कैसे, ताकत थी तो कर्तव्य किया, और ताकत नहीं है तो अब कैसे कर्तव्य पूरा करें। तो रोने लगे जंगल में जाकर एक महात्मा के चरण में, महाराज अब मैं क्या करूं। बोले यही है, सब छोड़ छाड़ और योग शक्ति के चक्कर में पड़ा तो भोग के द्वारा शक्ति क्षय हो गया, इसलिए तू वेदांत का आश्रय ले, बस खत्म, छोड़ वैराग्य का आश्रय लेकर ब्रह्मचिंतन कर, ब्रह्मचिंतन करके आत्मसुख का अनुभव करता तो विषय सुख में आसक्ति न होती, ये मुसीबत न आता। कहने का मतलब है कि जैसे योगी सिर्फ संकल्प के माध्यम से जो वस्तु निर्माण करता है वो पूरा का पूरा व्यवहारिक होता है, अब एक योगी व्यावहारिक सृष्टि का रचना कर सकता है तो वो तो महायोगी है, परमात्मा तो, इसलिए उसके लिए ये असंभव नहीं समझना, उसकी सृष्टि व्यावहारिक नहीं है ऐसा नहीं समझना, है उसकी कल्पना। मायावी व विजृंभ यद्यपि महायोगी व यह स्वच्छया तस्मय श्री गुरु मूर्तय नमईदम श्री दक्षिणा मूर्तय। तो अब क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है, सो अधिष्ठान में कल्पित आरोपित अध्यस्त सर्वम साक्षात व्यक्ति इति साक्षी, सारे विश्व ब्रह्मांड का कल्पना का अधिष्ठान तो चैतन्य है कि नहीं बोलो, है विश्व ब्रह्मांड के कल्पना का, माया जिस विश्व ब्रह्मांड की कल्पना करती है उस कल्पना का अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है कि नहीं। अब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में सारे जगत की कल्पना की गई है तो अधिष्ठान को अध्यस्त वस्तु का ज्ञान तो स्वतः होगा ही होगा, समझे कि नहीं। अधिष्ठान को अध्यस्त वस्तु का ज्ञान तो होगा ही होगा, अधिष्ठान चैतन्य है इसलिए चैतन्य को अध्यस्त वस्तु का ज्ञान तो होगा ही। हाँ, जैसे किसी चित्रकार ने दीवार में गाय भैंस पेड़ घर दुकान बगीचा बाहर फूल फल सब की कल्पना की है ना, ये बात अलग है कि दीवार जड़ है इसीलिए चित्रकार ने कल्पना किए गए उन सारे वन बागीचा पेड़ दुकान मकान बाल बच्चे गाय भैंस कुत्ते बिल्ले उसका बोध उस जड़ को जड़ दीवार को नहीं है, लेकिन अधिष्ठान दीवार की जगह यदि चेतना हो तो उसको क्या हो? उस चेतना में कल्पना किए गए चित्रकार के वस्तु का ज्ञान नहीं होगा उस चेतना को, है ये होगा, इसलिए वो साक्षी है वो सर्वज्ञ है। उस चेतना में जो भी कल्पना करोगे वो चेतना उस कल्पित पदार्थ को जानता है, सर्वज्ञ होने का एक ही सरल उपाय है, है? ये सर्वज्ञ की दूसरी परिभाषा है मोहन मोहनीश, ये याद कर लो, तो सर्वज्ञ की दूसरी परिभाषा। ये कारपेट जहां तुम बैठे हो, ये जो दरी अभी तो जड़ है इसलिए उसको ये पता नहीं कि मोहनीश मेरे ऊपर बैठा है, और केवल वो बैठा है इतने नहीं, उसकी कॉपी भी मेरे ऊपर है, कलम भी मेरे ऊपर है, रुमाल भी मेरे ऊपर है, है वो जड़ है इसलिए उसको पता नहीं। मान लो उस जड़ की जगह चेतना कारपेट हो तो, मान लो सपोज जड़ कारपेट की जगह चैतन्य कारपेट होगा तो उसके ऊपर तुम जो भी रखोगे वो जानेगा कि नहीं, सर्वज्ञ हो गया कि नहीं वो कारपेट। अधिष्ठान चैतन्य रूप होने के कारण उस चैतन्य अधिष्ठान में अध्यस्त सभी वस्तु को अधिष्ठान चैतन्य स्वतः जान लेता है, क्योंकि ब्रह्म सबका अधिष्ठान है और ब्रह्म चैतन्य है इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है। बड़ा आसान फॉर्मूला है। और तुम यदि देह भाव परिच्छिन्नता को छोड़कर चैतन्य भाव में तादात्म्य करके जहद अजहद लक्षणा के भागत्याग लक्षणा के द्वारा चैतन्य की एकता करते तुम्हारी स्वरूप तुम्हारी सत्ता भी ब्रह्म की सत्ता से भिन्न न होगी तो फिर तब तुमको क्या फील होगा, क्या अनुभव होगा? सारा जगत मेरे ऊपर अध्यस्त है और मेरे ऊपर अध्यस्त होने वाले हर पदार्थ को मैं जानता हूं। सीधी सी बात है, यही निश्चय करो, यही निश्चय अवधारय निश्चय करो। अब तुम कहोगे पहले करके दिखाओ महाराज, तो ये तो संभव नहीं है, हमने ये पहले से कह रहे हैं। य साक्षी लक्षण बोध సత్వం పదార్థ సౌచ్యతే సాక్షిత్వం అపి బోధృత్వం అవికారితయాత్మన. దూసరీ బాత్, ఆరోపి పదార్థ కే గుణధర్మో సే అధిష్టాన్ నిర్లిప్త రహతా హై. సమజే కి నహీ? ఆరోపిత పదార్థ కే గుణధర్మో సే అధిష్టాన్ నిర్లిప్త రహతా హై. ఆరోపిత పదార్థ కే వికార సే అధిష్టాన్ వికృత నహీ హోతా. जैसे किसी ने कपड़े के ऊपर अग्नि का चित्र बनाया तो वो अग्नि से उसका अधिष्ठान पर्दा कपड़ा जलेगा नहीं. जलेगा? गर्म तो होगा. फिर आग क्यों कहते हो उसको? फिर फिर आग क्यों कहते हो? ये आरोपित, आरोपित वस्तु के गुणधर्मों से अधिष्ठान अविकारी ही रहता है. सिनेमा में बारिश होती है, पर्दा गीला होता है. आग लगती है, पर्दा गर्म होता है? नहीं होता, क्योंकि अभिकारी है अधिष्ठान. इसी तरह जगत में परमात्मा ने माया से आग की कल्पना की है. तुम जिसको अग्नि कहते हो ना, उष्णा अग्नि गर्म है, जलाती है, वो तो तुम्हें जलाती है, तुम्हारे शरीरों को जलाती है. लेकिन जिस अधिष्ठान में माया ने अग्नि को बनाया वो अधिष्ठान कैसा है? अदाह्योयम. आरोपित वस्तु अधिष्ठान को जलाने, अग्नि का आरोप करके कपड़े के पर्दे में अग्नि का चित्र बनाकर वो चित्र रूपी अग्नि से कपड़ा गर्म नहीं होता, जलता नहीं. इसी तरह पंचदशी पढ़ लेना, चित्र दीप प्रकरण आएगा. क्या सुंदर ढंग से विद्यारण्य मुनि जी ने वर्णन किया है वहां जगत का. पानी की कल्पना करके वो अधिष्ठान गीला नहीं होगा. अक्लेद्योयम अदाह्योयम. चक्कू तलवार छुरी की कल्पना करके वह अधिष्ठान कटेगा नहीं. पर्दे में चक्कू का चित्र बनाओगे तो कपड़ा कट जाएगा? चक्कू से नहीं कटेगा. तो अधिष्ठान को तो कुछ लेना देना ही नहीं है. निर्विकार रहेगा कि नहीं अधिष्ठान? इसीलिए माया से जो कुछ भी कल्पना हो अधिष्ठान निर्विकार ही रहता है. वही तुम हो, तो तुम्हारे में ही बुद्धि की कल्पना हुई है. बुद्धि में विकार आ सकते हैं, तुम निर्विकार रहोगे. तुम्हारे में मन की कल्पना हुई है, मन में सुख दुख आदि का विकार आ सकता है, तुम निर्विकार ही रहोगे. तुम्हारे में प्राण की कल्पना की गई है, प्राण में विकार आ सकते हैं, तुम निर्विकार ही रहोगे. तुम्हारे में इंद्रियों की कल्पना की गई है, इंद्रियां सकल विकल आदि होंगे, तुम निर्विकार ही रहोगे. तुम्हारे अधिष्ठान में शरीर की कल्पना की गई है, शरीर मरेगा पैदा होगा, तुम निर्विकार ही रहोगे. इसलिए तत्त्वम, एक तुम पद का अर्थ निर्विकार है. साक्षित्वम अपि बोधृत्वम अविकारितयात्मनः. सो अध्यस्तम सर्वम साक्षात अन्य अनपेक्षेत प्रकाशयति इति साक्षी तत्प्रकाशे नैव प्रकाशः सिद्धः. इससे आत्मा प्रकाश भी सिद्ध हो गया है. उक्तम अर्थम उपसंहरति. तुम पद का जो शोधन आरंभ किया था उसका इस 27वें श्लोक में जाकर अब सब उपसंहार कर रहे हैं. देह इंद्रिय मन प्राण अहंकृतिभ्यो विलक्षण. अध्यात्म में तमपद के वाच्यार्थ में ये सब चीज हैं, देह है, इंद्रियां हैं, मन उपलक्षित अंतकरण है, अहम प्राण है और अहंकार है। समझे कि नहीं? जन्म मृत्यु का हेतु देह, सकल विकल का हेतु इंद्रियां, सुख दुख का हेतु मन, भूख प्यास का हेतु प्राण, कर्ता भोक्ता का हेतु अहंकार। समझे कि नहीं? इन सब उपाधियों से विलक्षण, भिन्न विलक्षण, प्रोज्जिता शेष षड्भाव, और ये सभी में षड्भाव विकार हैं। देह में भी षड्भाव विकार हैं, इंद्रियों में भी षड्भाव विकार हैं, प्राण में भी षड्भाव विकार है, मन में भी षड्भाव विकार है, अहंकार में भी षड्भाव विकार हैं। और इन सबसे विलक्षण जो साक्षी है, अधिष्ठान है, प्रोज्जित अशेष षड्भाव, कोई भी शेष न रहे, अशेष लेश भी न रहे, ऐसे अशेष षड्भाव विकारस प्रोज्जित, अशेष षड्भाव विकार प्रोज्जित, हटा दिया, हटा दिया, निकल गया, वही तुम पद का अर्थ है। ये तुम पद के अर्थ को करामलकवत साक्षितया, चैतन्यतया, आनंदतया, ज्ञात्रीतया, बोद्रितया अवधारय, निश्चय करो। तम पदार्थम, तम अर्थम एवं निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत पुनः। पहले तम पद के अर्थ को शोधन करके, विचार करके, तम पद का अर्थ क्या है, अभी तक जो 27 श्लोक तक बताया गया है, उस अर्थ को तुम पक्की तरह निश्चय करके, अवधारण करके, मैं ऐसा हूं ये निश्चय करो, है ना? उसके बाद अब तत् दूसरा जो पद है, तत् तत् का अर्थ क्या है, क्योंकि पद अर्थ जाने बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। तुम इस पद का अर्थ तो तुमने जान लिया है, अब तत् पद का अर्थ क्या है, इस पर तुम चिंतया विचार करो। अब ये तत् पद का शोधन करने जा रहे हैं, यहां से तत् पद शोधन हो रहा है। स्वयं ही शंकराचार्य जी कह रहे हैं शिष्य को, तुम अर्थम एवं निश्चित्य, निश्चय करने के बाद तदर्थम चिंतयेत पुनः। कैसे चिंतन करे तदर्थ को? तदर्थ चिंतन करने के दो प्रकार हैं। तत्पद के अर्थ को चिंतन करने के लिए दो प्रकार है। पहला प्रकार है अतद्व्यावृत्ति रूपेण तदर्थम चिंतयेत, है ना? अतद व्यावृत्ति के रूप में तदर्थ का, तत्पद का अर्थ का चिंतन करो। दूसरा है साक्षात विधिमुखे न च, एक निषेध मुख से, दूसरा विधिमुख से तत्पद का अर्थ चिंतन किया जाता है। निषेध मुख से कैसे करते हैं? हाँ, अथा तो आदेश नेति नेति, ये निषेध, ये निषेध मुख से हो गया ना। यह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम, ये विधिमुख है। ये क्या है? यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम, जिसको मन से नहीं जाना जा सकता लेकिन जिसके कारण से सहयोग से मन जानने वाला हो गया, ये जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, जिसको बुद्धि नहीं जान सकती लेकिन जिसके आश्रय से बुद्धि जानने वाली हो गई, तदेव ब्रह्म, उसको तुम ब्रह्म जानो, बुद्धि को नहीं। जिसके संसर्ग से बुद्धि जानने में समर्थ हुई है उसको ब्रह्म जानो, बुद्धि को ब्रह्म मत मानो। समझे कि नहीं? जिसके संसर्ग से लोहे में गर्मपना आ गया उसको अग्नि जानो, लोहा जिसको जला नहीं सकती, क्या समझे? इस मंत्र का अर्थ ये समझ लो, लोहा जिसको जला नहीं सकती, जिसके वजह से लोहे में जलाने की क्षमता आ गई उसको तुम अग्नि मानो, लोहे को अग्नि मत मानो। लोहा अग्नि नहीं हो सकता है, फिर अग्नि क्या है महाराज? तो जिसके संपर्क से लोहे में जलाने की क्षमता आ गई है वो अग्नि है। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यद इदम उपासते। तुमने जिस लोहे को पकड़कर तुम दिखा रहे हो चिमटे से पकड़ करके, ये अग्नि है ये अग्नि है, वो अग्नि नहीं है। अग्नि आंखों से दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं, अग्नि मूर्त नहीं अमूर्त वस्तु है। लेकिन अमूर्त होता हुआ भी मूर्त के संयोग से मूर्त में अमूर्त जो काम करने की शक्ति है, अमूर्त में वो काम करने की क्षमता मूर्त में आ गया। भाई हमारा वेदांत तो इसी तरह चलता है भाई, हम तो इसी तरह समझाएंगे, हमारी शैली तो यही है। चिंतयेत, विचार करो भाई। दूसरा अथा तो आदेश नेति नेति। पुष्पदंताचार्य जी ने यही कहा, अतत व्यावृत्यायाम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो अतत व्यावृत्यायाम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्य पतिविध गुण कस्य विषय पदे त्वरवाची ने पतति न मन कस्य न वच। देखो सब कस्य स्तोतव्य अतद्व्यावृत्यायाम चकितम अभिधत्ति श्रुतिरपि। आपके अपरंपार महिमा का वर्णन श्रुति सीधा विधि मुख से कर नहीं सकती, ऐसा ही है शिवा, परमात्मा ऐसे ही है करके विधि मुख से कह नहीं सकती, क्योंकि वाणी छोटी चीज है आपकी महिमा के सामने। आपके अपरंपार महिमा के सामने वाणी क्या है? बहुत तुच्छ चीज है। तब फिर वाणी, हमारी वाणी तो क्या, भगवती अपर श्रुति भी आपको इदम इत्थम करके प्रतिपादन नहीं कर सकती। तब श्रुति डरती है, श्रुति डरती है। कई महीने ये परमात्मा है करके विधि मुख से कह दिया और वो चीज परमात्मा सिद्ध नहीं हुआ तो मैं झूठ सिद्ध हूं, इसलिए निषेध मुख से कह देने में अपनी इज्जत बची रहेगी। समझे कि नहीं? मैं जानता हूं तुम कहो और अनुसंधान करने पर तुम जानने वाले नहीं सिद्ध हुए तो तुम मूर्ख सिद्ध हो जाओ। तो बढ़िया यह है कि मैं नहीं जानता हूं बेटा, कह दो छुट्टी, है ना, मैं नहीं जानता हूं कह दो तो काम बन गया। मूर्ख होने का, उल्लू बनने का अवसर तो नहीं आएगा कम से कम। श्रुति डरती है, अपरिच्छिन्न परमात्मा को कहीं वाणी से परिच्छिन्न न कर दो, इसलिए अतत व्यावृत्ति, ये ब्रह्म नहीं है। तो तुम जिसको भी पकड़कर दिखाओ नाम रूप को, क्या ये ब्रह्म है, तो बोले नहीं बेटा ये ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है तो ये है, बोले ये भी नहीं है, ये नहीं है तो ये है, बोले ये भी नहीं है। फिर भला ब्रह्म क्या है, फिर भला ब्रह्म क्या है, बोले सबका निषेध जो करोगे तो फिर ब्रह्म क्या सिद्ध हुआ, बोले फिर भी ब्रह्म सिद्ध होगा, क्योंकि निषेध भी करेंगे तो निषेध करता कोई न कोई शेष रहेगा। निशेषावधि, शेषावधि, निशेषा शेषावधि, वही तो ब्रह्म है, मैं बड़े दृष्टांत दिया करता हूं इस बात को समझाने के। एक तो हम ये कहा करते हैं व्यवहार में कि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, है ना, शब्द प्रयोग क्या करते हैं हम, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, और सही शब्द यह है कि मूर्तिकार मूर्ति बनाता नहीं है। विचार करो, मूर्तिकार मूर्ति नहीं बनाता है, मूर्तिकार अमूर्ति को हटाता है। समझे कि नहीं? मूर्तिकार मूर्ति नहीं बनाता, अमूर्ति को हटाता है, यही अतत व्यावृत्ति हो कि नहीं? मूर्ति तत्, अमूर्ति अतत्, मूर्तिकार मूर्ति को बनाता नहीं, जो मूर्ति का भाग नहीं है उसको छेनी से तोड़ तोड़ कर फेंकता है, है? मूर्ति में नाक बनाएगा वो मूर्तिकार, नाक नहीं बनाता है, क्या करता है, नाक के आसपास में जो नाक का भाग नहीं है उसको तोड़कर फेंक के हटा देता है, क्या दिखने लगता है, नाक दिखने लगता है। कान बनाता है मूर्ति, कान नहीं बनाता है, कान के आसपास में जो पत्थर के जो कान का भाग नहीं है उनको तोड़ तोड़ कर फेंकता है तो क्या निकला वहां, है निषेध के बाद जो अवशेष रहा क्या, कान, वो कान उसने बनाया, कान तो नहीं बनाया उसने। इसी प्रकार के जो सिर उसने मुख बनाई, हम कहते हैं मुख बनाई उसने, उसने मुख बनाया नहीं है, मुख का जो भाग नहीं है उसको तोड़ तोड़ कर काट काट के फेंका, मुख के जो भाग नहीं है उसको काटने के बाद बचा क्या, मुख बच गया, पत्थर का वो भाग मुख बच गया, जो मुख का भाग नहीं है उसको काट के फेंका तो बचा क्या, मुख बच गया, पत्थर के उस भाग में मूर्ति बच गया, मूर्ति बनाया नहीं है, मूर्ति बच गया, बच गया, बन गया, अपने आप बन गया, बनाया नहीं है, मूर्ति कब बना, बोले अमूर्ति, मूर्ति का जो भाग नहीं था उतने को काट के फेंका। ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है, अतद व्यावृत्ति, ये देखो अतद्यावृत्ति, ये परफेक्ट है। तत् माने मूर्ति, अतत् माने अमूर्ति। मूर्तिकार अतत् को व्यावृत्ति करता है, हटाता है, मूर्ति वही है, तत् तो वही है ही है। इसी प्रकार के तत् माने ब्रह्म, अतत् माने अब्रह्म। तत् माने परमात्मा, अतत् माने अनात्मा। तत् माने चैतन्य, अतत् माने जड़। तत् माने आनंद, अतत् माने दुख। समझे कि नहीं? अब जो अतत् का भाग है उन सबको फेंको, तो अतत् माने माया, अतत् माने माया का कार्य, माया सहित माया के कार्य को व्यावृत्त कर देते हैं तो तत्व बचा ही रहता है। समझे कि नहीं? कपड़े के पर्दे में किसी सुंदर चित्रकार कलाकार ने पेंटिंग से कपड़े के ऊपर कपड़ा बना दिया। कपड़े के ऊपर क्या बनाया? कपड़े के ऊपर कपड़ा बनता है, पेंटिंग का कपड़ा। कपड़े के ऊपर पेंटिंग का कपड़ा बना दिया उसने। मान लो ये कपड़े के ऊपर उसने घर बनाई, घर में खिड़की का चित्र बना दिया, खिड़की में पर्दा लगाया हुआ दिखाएगा कि नहीं? तो पर्दा क्या है? कपड़े के ऊपर कपड़ा है कि नहीं बोलो, हैं? उसको क्या कहेंगे? वस्त्राभास कहेंगे। वस्त्र के ऊपर वस्त्र की कल्पना क्या है? वस्त्राभास। अब वस्त्राभास से चलते वस्त्र नहीं दिख रहा है, अधिष्ठान वस्त्र दिख रहा है। आभास वस्त्र के चलते अधिष्ठान वस्त्र नहीं दिख रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? आभास वस्त्र को केमिकल से धो डालो। जब केमिकल से धोओगे तो क्या जाएगा? आभास वस्त्र केमिकल से धुल जाएगा। पेट्रोल से, उससे, तारपीन से धो लो तो धुल जाएगा कि नहीं? पेंटिंग से बनाया हुआ कपड़ा है, आभास वस्त्र, वो तो धुल जाएगा। वो क्या हो गया? अतत व्यावृत्ति। अतत है ना, वस्त्राभास वस्त्र नहीं है, इसलिए अतत है। अतत व्यावृत्त हो गया धोने पर, तो क्या दिखा वहां? कपड़ा बनाना नहीं पड़ा, कपड़ा दिख गया। इसी प्रकार से अभी ब्रह्म अधिष्ठान में माया से जगत की कल्पना हुई, जगत दिख रहा है, ब्रह्म नहीं दिख रहा है। तो अब श्रुति क्या करती है? जगत अतत है, इसीलिए अतत को व्यावृत्त हटा दो तो अधिष्ठान तो स्वतः दिख जाएगा। ये आसान तरीका है। अब यदि ऐसा करना तुमको कठिनाई मिले पड़े तो फिर क्या करो? सर्वम खलिदम ब्रह्म। वस्त्राभास कुछ नहीं है, वस्त्र रियल है, और क्या? सर्वम खलिदम ब्रह्म। वस्त्र भी वस्त्र ही है, वस्त्राभास भी वस्त्र है, गृहाभास भी वस्त्र है, खिड़की आभास भी वस्त्र है, मठाभास भी वस्त्र है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। हो गया कि नहीं? जितने भी अध्यस्त हैं सब अधिष्ठान से अभिन्न है, इसलिए सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो विधिमुख और निषेध मुख से तत्पद का अर्थ का चिंतन करनी चाहिए। दो प्रकार है। अब विधिमुख में भी दो भेद हैं, ध्यान लो। विधिमुख में, विधिमुख से तत्पद का चिंतन करने के दो भेद हैं। एक है तटस्थ लक्षणत्वेन तत्पद का विधिमुख से चिंतन करो, दूसरा स्वरूप लक्षणत्वेन तत्पद का विधिमुख से चिंतन करो। यानी तत्पद के चिंतन करने के टोटल कितने भेद हो गए? तीन। पहले दो भेद करो, एक निषेध मुख से तत्पद का चिंतन करो, नामरूपात्मक आरोपित पदार्थ का व्यावृत्त करके, अतत का व्यावृत्त करके, उस व्यावृत्ति का अधिष्ठान तत्पद जो अनुभव में आए वही तत्पद का अर्थ है, शेष रहे वही तत्पद का अर्थ है। दूसरा, विधिमुख से तत्पद का चिंतन करो। तो विधिमुख में दो प्रकार है, एक तटस्थ लक्षणत्वेन विधिमुख से तत्पद का चिंतन करो, दूसरा स्वरूप लक्षण तेन तत्पद का चिंतन करो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ते विसन्ति सन्ति तत् ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व। जिससे सारे जगत उत्पन्न हुए हैं, जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है और जिसमें सारा जगत लय होता है, वह तत्पद का अर्थ है। किससे जगत उत्पन्न हुआ? बोले परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ, परमात्मा में ये जगत प्रतिष्ठित है, परमात्मा में ही लीन होगा। यह है तटस्थ लक्षण। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते, नोचेत दर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत, इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम, त्वत्पादाम्बुज सेवने हि सततम कालो मया नीयते। तटस्थ लक्षण। इस प्रकार से तत्पद के अर्थ का चिंतन करो, चिंत्यता चिंतय, ये तटस्थ लक्षण के रूप में। उसने मां के स्तन में, बच्चा जन्मने से पहले मां के स्तन में दूध पहले ही तैयार कर दिया है, ऐसा परमात्मा जिसका नाम विश्वंभर है, सारे प्राणियों का भरण पोषण करता है। यदि वह विश्वंभर न होता, बच्चा पैदा होने से पहले मां के स्तन में दूध कैसे तैयार होता? इत्यालोच्य, ये क्या है? तटस्थ लक्षण। दूध किसने बनाया? ये परमात्मा ने। बच्चा किसने बनाया? परमात्मा ने। बच्चा किसने टिका? परमात्मा ने। अब बच्चा कहां मरा? बच्चा कहां मरा? जिन अधिष्ठान में पैदा हुआ था उसी अधिष्ठान में मरा, और क्या? परमात्मा में पैदा हुआ तो परमात्मा में ही जिंदा था, तो परमात्मा में ही मरा, गया कहां? जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सब यही है कपड़े बदल बदल के। यही तटस्थ लक्षण है, ये है। हाँ, दूसरा स्वरूप लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण सब प्रयोजन के लिए धारण किया हुआ है, उसका अर्थ होता है अपने स्वरूप को विकृत किए बिना अन्य रूप को धारण करके प्रयोजन सिद्ध करने वाला। समझे कि नहीं? वो क्या है? तटस्थ लक्षण। हाँ, और अपने स्वरूप में ही रहे, अन्य कोई रूप धारण न करे, वो स्वरूप लक्षण। अब स्वरूप लक्षण से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसीलिए तटस्थ लक्षण बनाना पड़ता है। समझे कि नहीं? तुम्हें भूख लगी हो तो आलू खाने से भूख निवृत्ति होगी कि नहीं? है? हो जाएगी? आपको एक आलू दे दिया जाए, भूख निवृत्ति हो जाएगी? आलू, हाँ, कच्चा, भूख निवृत्ति हो जाएगी? उसी आलू की फिर टिकिया बनाकर दे दिया जाए तो, पकौड़े बनाकर दिया जाए तो, पराठे बनाकर दिया जाए तो? तो पकौड़ा, टिकिया, पराठा तटस्थ लक्षण है। हाँ, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अन्य रूप धारण किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेने कि वो आलू नहीं है। है आलू, लेकिन अब सीधे तुमको आलू दिया जाए तो नहीं खाओगे तुम, तो प्रयोजन सिद्ध नहीं करोगे। तो सच्चिद आनंद ये स्वरूप लक्षण है, ये तो भाई इमानी भूतानी जायंते, ये तटस्थ लक्षण है। टिक्की पकौड़ा परोठा ये आलू का तटस्थ लक्षण है, आलू जो बाजार से खरीदते वो स्वरूप लक्षण है। और क्या, आलू को आप किस तरह जानेंगे? ये दो रूप से, किसी भी रूप से जान लो। किसकी टिकिया है? बोले आलू की टिकिया है। आह क्या बढ़िया है, आलू बढ़िया है कि टिकिया बढ़िया है बोलो आलू बढ़िया है कि टिकिया बढ़िया है? दोनों बढ़िया है तो फिर आलू खाओ खा तो आलू रहे हो। इसीलिए परमात्मा दो रूप धारण करता है। चलो आगे क्या होगा कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।